प्रश्न है, बहुत मार्मिक प्रश्न है, इसी गाथा से संबंधित है। आपने शुद्ध नये जो कि ज्ञान की पर्याय है उसे ही आत्मा बताया, तो क्या ऐसा सुनकर यदि हम ज्ञान की पर्याय की डोर पकड़कर आत्मा में जाना चाहें तो क्या जा सकते हैं? ऐसा भी सुना है कि जिस समय आत्मा की बात सुनकर उल्लास आए तो उसी वक्त आत्मा को पकड़ने का प्रयास करें तो हमारा काम अर्थात सम्यक हो जाएगा, अथवा पहले तत्व निर्णय करें, अथवा कब तक तत्व निर्णय करें? क्या बिना ध्यान के भाग मात्र तत्व निर्णय से ही काम हो जाएगा? सिंह की पर्याय में तो उसने तत्व निर्णय नहीं किया, बिना किसी भूमिका के उसे सम्मा दर्शन कैसे हो गया? कृपया समाधान करें। ये जितनी भाषा है वो जो अपनी लौकिक भाषा है और उस लौकिक भाषा में अपन बात करते हैं, शिव रमणी भरतार, क्या मुक्ति रूपी पत्नी के पति हो। अब मोक्ष में कोई पत्नी पत्नी है नहीं, वहां कोई पति पति नहीं है, लेकिन हमको पति पत्नी की भाषा में सोचने की आदत पड़ गई ना, इसलिए हमको ऐसा ही लगता है उसी विकल्पों के माध्यम से हम उस मूल वस्तु को पकड़ना चाहते हैं। देखो, एक पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, मुझे तो पता नहीं है, आपको तो पता है ना। मैंने कल अखबार में पढ़ा था नवीन सिंह जी कि उसमें ये लिखा था कि आदमी का दिल बहुत कमजोर होता है अपेक्षाकृत महिलाओं के, और जब पत्नियां मर जाती हैं तो अधिकांश पुरुष एक साल के भीतर मर जाते हैं, उनका बहुमत है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना दुख होता होगा। अब जीवन में एक पत्नी मरे, क्योंकि एक ही है तो एक ही मरेगी ना, क्या? अब कोई महापुण्यशाली होंगे तो दो हो जाएंगे तो दो मर जाएंगे। बनारसी दास ने लिखा है, तीन विवाही भार्या दो यशोता सुत सात। तीन तो शादी की, दो लड़कियां हुई, सात लड़के हुए, नौ हुए नौ उमियोए, और नौ हुए और मेरी आंखों के सामने तीनों पत्नियां मर गई और दो ही बच्चे मर गए। क्या ऐसा संयोग किसी बनारसी दास जी को मिला, ऐसा किसी को मिलता होगा? क्यों बनारसी दास जी महापुण्यशाली थे कि महा क्या कहें बोलो, क्यों क्या उन्हें समय सार मिल गया था, ऐसा महापुण्य उनके था, और लौकिक दृष्टि से इतने प्रतिकूल संयोग थे। हमारे मुंह में पानी भर भर आता है, पांच दिन का इंद्र बनने के लिए हम 25 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, क्यों कर्जा लेके भी। लेकिन अभी आपने देखा ना कि एक पत्नी के मरने का जितना दुख होता है, सौधर्म इंद्र को उससे 40 नील गुणा दुख होगा। नहीं समझ में आया, क्यों अभी समझिए ना आप कि उसके जीवन में 40 नील इंद्राणियां मर जाती हैं, उसे पता तो चलता ही होगा ना। ये तो सोदर में जिसकी दो सागर की आयु है, जिसकी 22 सागर की आयु होगी उसकी क्या हालत होगी, पता तो चलता ही होगा। वो प्राणी मर गई नहीं आ गई, ऐसी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि ये देवांगनाएं सब पहले स्वर्ग में ही इधर पैदा होती हैं, क्योंकि ऊपर इतनी अधिक आयु है ना, तो आयु के हिसाब से बंटवारा है, तो जिस स्वर्ग में उतनी आयु होती है ना वहां वे पैदा होती हैं, क्योंकि वास्तव में वे सोल में स्वर्ग की देवांगना थोड़ी है, वो तो जहां पैदा हुई वहां की है। कल नहीं ना आपकी बात है, अब देखिए सुनिए जरा बात। वो इंद्र जिसके नियोग की जो देवांगनाएं होती हैं वो ले जाते हैं यहां से उठा के, तो फिर पता तो पड़ गया वो पुरानी गई, अब नई को ले जाना है क्यों। तो आप समझ लेना है कि जिस इंद्र के लिए आप अपने मुंह में इतना पानी ला रहे हैं, वो इंद्र कितना सुखी है इसे अंदाज लगाना। बनना है इंद्र दीपन जी, इंद्रानियां तो बहुत सुखी होंगी क्यों, क्योंकि उन्हें तो पति के वियोग का दुख सहने ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तो सधवा ही मर जाती हैं। माताएं बहनें बहुत ऐसे विकल्प करते हैं कि मैं अपने पति के जिंदा रहते मर जाऊं, क्या बोलते उसको एहसास, सौभाग्यवती ही मर जाऊं तो बहुत महाभाग्यशाली हैं वे। आप जानते हैं वे तो पहले स्वर्ग की हैं, मैं पैदा हुई और वहां तो कायमाना पर मनुष्यों जैसा ही प्रविचार होता है, और सोल में स्वर्ग की वे नियोगनी है इंद्र की मेरी भाई, और वहां तो मना प्रविचारा होता है अकेला, बस मन में ही विकल्प आता है और उसे तृप्ति हो जाती है, तो उनकी वासनाओं की तृप्ति कैसे होती होगी, कितना सुख होगा उन्हें समझ लो पति देवता। हम ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं लेकिन हमारा दिमाग चलता ही नहीं है, बस हम तो इतने मोहित हो रहे हैं पुण्य के फल में कि वो मिलेगा तो जैसे हम बहुत सुखी सुखी मोक्ष ही हो जाएगा क्या। एक दफे सारे संसार में दुख तो भाषित हो, हमारे शास्त्रों में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, एकाध गति के सुखों का वर्णन हो तो बताओ निकल गया, तो चारों गति के मां मैंने दुख पायो, और छड़ाला में भी चारों गतियों के दुखों का ही वर्णन है कि नहीं है। पहले एक दफे ये संसार दुख रूप तो लगे, इसमें रंग मात्र भी सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो संसार की कौन सी 63वीं गाथा है ना, सुरपति नरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणी के विषयों में रमे। तो संसार की 63वीं गाथा का पद्यानुवाद है, और ये पद्यानुवाद ऐसा है कि अक्षर टू अक्षर मिला लेना आप गाथा से, एक अक्षर का भी फर्क नहीं है। तो आप समझ में तो क्या कह रहे हैं, सुरपति माने वही आ गया ना आपके इंद्र, नरपति माने चक्रवर्ती, और असुरपति क्यों है ये इंद्र नाग नगेंद्र बोलते ना, नागेंद्र है ना, तो ये जो भवनवासी वगैरह नीचे जो है ना इनके अधिपति हैं, वे असुरपति बोलते हैं उन्हें, सुर और असुर। हिंदू धर्म में असुरों को राक्षसों को बोलते हैं, अपने यहां तो यही असुर कुमार के जाति होते हैं देव, उन सबको भी असुर बोलते हैं, तो उनके अधिपति। तो तीन आदमी विश्व में उनने छांटे जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी माने जाते हैं, यदि मनुष्य गति में माना जाएगा तो चक्रवर्ती सबसे ज्यादा वैभव उसके पास होता है, सबसे ज्यादा प्रभुता उसके पास होती है, सारे छखंड के लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, और मनुष्यों में एक देवों में इंद्र, और नीचे अधोलोक वालों में तो तीन लोग पढ़ो, तीन लोग मंडल विधान है ना, तो तीन लोग का एक एक प्रतिनिधि लिया अपने, उन्होंने कुंदकुंडाचार्य ने प्रजनसार की 63वीं गाथा में तीनों लोक के एक एक प्रतिनिधि लिए, और जो वहां के सर्वोत्कृष्ट थे। अब ये कहते हैं कि वे कितने सुखी हैं क्या, तो ये निर्णय करके देख लें कि जब हम बनेंगे चक्रवर्ती, जब हम देव इंद्र बनेंगे तब हम पता लगाएंगे, तब पता लगेगा। अभी कैसे पता लग जाए हमें कि इंद्र कितना सुखी है कि नहीं है, तो दुखी है तुम्हारे कहने से मान लें, लेकिन फिर तुम्हें पता चल गया मोहनलाल जी सदर्म जी, यदि फिर तुम्हें पता चल गया और फिर तुम्हारा विचार बदल गया कि ये सुख हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो स्वर्गों में ये सुविधा नहीं है कि तुम जहर खाकर भी मर सको। कम से कम यहां पत्नी से झगड़ा हो जाए, बच्चों से झगड़ा हो जाए तो जहर खाके मरने की तो सुविधा है। क्यों? और फिर उतने काल तक वहां की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। आप सोचो कि उन विषय भोगों में तो पत्नी में सुख नहीं है, ऐसी श्रद्धा जिसकी हो गई और उसके गले 96,000 पड़े, अब क्या करे? वो तलाक की व्यवस्था भी नहीं है, ये कभी छोड़ नहीं सकते आप। क्या वो कहते नियोग है, नियोग है। कुछ पुण्य जी निधक्ति निकासित होते हैं ना, कि जिनको भोगने से ही छूटते हैं, बिना भोगे छूटते ही नहीं है। क्यों? जिसमें आपको सुख भाषित नहीं होगा और फिर वो अपरिमित काल तक उसे आप छोड़ नहीं सकते तो क्या दशा होती होगी? ये नाचने वाले कितने नाचते हैं ना, तो कितने लोग, कितना आनंद आ गया, अरे मजा आ गया, आज तो सब पूजा में मजा आ गया, कैसे नाचे जम जम के ईडिया समिति पूर्वक है। क्यों? मालूम क्या लिखा है अमृतचंदाचार्य ने के सातवीं आठवीं गाथा में, कि जैसे अपन कढ़ाई में घी रखते हैं ना, वो चढ़ा देते हैं और फिर जब उसमें पकौड़े मकोड़े बनाना हो तो कब डालते हैं? जब पक जाए एकदम, यदि जरा भी गर्मी कम रहा तो उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? और फिर जब उसे उसमें पूरी डाली आपने तो बिल्कुल जो थी एकदम फूल के कुप्पा हो जाती है और खूब नाचती है। फूल के कुप्पा हो गई और खूब नाची, कितनी सुखी है। ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही सुखी है, तुम फूल के कुप्पा हो रहे और उतक उतक के नाच रहे हो, ये उतने ही पूरी जैसी हालत है तुम्हारी। मैं पंक्ति बोलू संस्कृत की, घृतोप सिक्त, क्या तप्त घृतोप सिक्त पुरुष इव, क्यों तपे हुए घी के में पड़े हुए पुरुष के समान पुण्य कर्म के उदय में जीव सुख भोगते हैं। क्या? तो उन्हें तपे हुए घी के कड़ाई में डाल दो और जैसा सुख उन्हें होता, क्योंकि घी तो ठंडक पहुंचाने वाला है ना। क्यों? ऐसा संसार सुख को पाते हैं कि मूल पंक्ति प्रतिसार में पड़ी है। गुरुदेव के बगल में तो सब सास रखे रहते थे, अभी उठा उठा करके बता देते थे। अब यहां तो आपको हमारा ही विश्वास करना पड़ेगा कि घर जाके देख सकते हैं कि उसमें लिखा कि नहीं लिखा। तो उसमें क्या लिखा? सूर्यपति असुरपति, नरपति सूर्यपति असुरपति, इंद्रिय विषय दब दाह से, पांच इंद्रियों के विषयों की भयंकर आग लग गई उनमें। दबदाह जानते हैं किसे बोलते हैं? सुना कभी? देखो अग्नि कई प्रकार की होती है। एक तो अपने चूल्हे की अग्नि होती है, वो तो सब जानते हैं जैसे रोटी सेकते हैं। एक जठराग्नि होती है, समझे ना, एक कामाग्नि होती है, और एक होती है दावाग्नि। जंगल में जो आग लग जाती है ना आपस में बांस रगड़ के, तो उसे कौन बुझाए? भयंकर मेघों की वर्षा हो तो ही बुझे, और मेघ ऐसे बरसते हैं हर जगह। क्यों? पन्नी बरसने तो सब सावा हो जाएगा। तो एक समुद्र के भीतर होती है, उसे बोलते बड़वाग्नि। क्यों? तो वो कहते हैं कि जैसे जंगल में सूखा जंगल, गर्मियों के दिन और बांसों के रगड़ने से आग लग गई और सारा जंगल धू धू करके जल रहा है, ऐसी हालत चक्रवर्ती इंद्र और नागेंद्रों की है। ये चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती आदि है ना, और इंद्र अगले भव से मोक्ष जाने वालों की बात कर रहे थे। अरे अज्ञानियों की होगी, अज्ञानी तो बहुत आनंद में है, मजे में है, ज्ञानी तो बहुत सुख में है। क्यों? झगड़ा होता था कि ज्ञानी को सुख का वेदन होता है कि नहीं होता है। तुमने प्रतिसाद नहीं पढ़ा होगा, क्या सब प्रतिसाद वादा करता है कि नहीं करता है, क्या सब छूट छाट गया फिर वो क्या नर पति सुर पति असुर पति इंद्रिय विषय दवदाह से, पांच इंद्रियों के विषयों की भयंकर आग उन्हें लग गई, उसे जल रहे हैं। तो हम कैसे माने, हम कैसे माने कि वे जल रहे हैं? व्हाट इज द प्रूफ? क्योंकि आज का आदमी तो बिना प्रूफ के तो बात नहीं करता ना, बच्चे नए नए बच्चे हो गए, इन्हें तो हर बात का जवाब विद प्रूफ चाहिए ना। तो उन्होंने कहा इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना, और वो बर्दाश्त के बाहर का दुख हो गया उन्हें, इसलिए रमणी के विषयों में रमे, कि जो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें रमण करते हैं, क्योंकि उस भयंकर आग के बिना, दाह के बिना, राजन बोले ना कामाग्नि, फिर भूख पेट की भूख, फिर पांच इंद्रियों के विषय समझ लेना, उनके बिना इतने गंदे भोगों में वो फंस नहीं सकते थे। ये प्रूफ है इस बात का। चक्रवर्ती की रानी पटरानी है तो मासिक धर्म से नहीं होती, उसके बाल बच्चे नहीं होते, क्यों? क्यों? क्योंकि यदि वो होंगे तो चक्रवर्ती के भोग में अंतराय होगा, और चक्रवर्ती का भोग निरंतराय होता है, निरंतराय होता है मतलब निरंतर होता है, एक दिन का भी वियोग उसे बर्दाश्त नहीं है, तत्काल नहीं। इसके लिए ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। तो वो कहते हैं ये जो इतने गंदे विषय हैं जिनका नाम लेने में शर्म आती है, पर वो इन पांच इंद्रियों के विषयों में रम रहे, कौन? सौदर्म इंद्र महाराज कितनी 40 मील एक मरीज दूसरे को तीसरे मरीज, थोड़ा बैराग नहीं होता होगा? अभी मर गई जान दो, अपन छोड़ दो, अभी तो कम, अभी तो इससे मानो सच्चे हैं कम से कम, हर थोड़ी आदमी एक मर जाता तो दूसरी शादी करता है, हजारों में से एक आध दो कर लेते होंगे पुराने जमाने में, आज तो कहां है, क्यों? वहां तो फटाफट एक ही तो दूसरी, दूसरी की तीसरी, तीसरी की चौथी, तो कितना अंदर में वो उससे पांच इंद्रियों के विषयों के दबदाह से पीड़ित होंगे, आप उसकी कल्पना करो। जो जगत में आपको सुखी से दिखते हैं, यदि एक गाथा मैं बोल रहा हूं उसमें लगातार 5-7 गाथाएं हैं और उदाहरण दिए हैं अनेक, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। उसमें लिखा है कि जिसके कान में भयंकर पीड़ा ना हो तो वो बकरे की पेशाब को कान में डलवाने के लिए क्यों तैयार होगा, ऐसा लिखा है संस्कृत में, मूल संस्कृत में लिखा है। क्या मतलब? आयुर्वेद में शायद ऐसा प्रसिद्ध है कि कान में दर्द हो तो बकरे की पेशाब डालो तो ठीक हो जाता है। अब अंदर कोई घाव माव होता होगा, वो एंटीसेप्टिक होती, जो भी होता हो, लेकिन वो प्राणी प्रसिद्ध है, आचार्यों ने उसका उदाहरण दिया है कि कान में भयंकर दर्द है तो बकरे की पेशाब डालने से दर्द ठीक हो जाता है। देखो भैया, कोई जाकर के कान में दर्द वाला बकरे की पेशाब डाल के उसका कान खराब हो जाए तो मेरे तो लड़ने मत आना। मैं तो सिर्फ वो उदाहरण दिया है, आचार्य ने दिया है उसका अर्थ बता रहा हूं, मैं वैद्य नहीं हूं, मैं दवाई देने वाला नहीं। क्या आचार्य भी वैद्य नहीं थे? उन्होंने लोक में सुना कि ऐसा होता है, उन्होंने कह दिया, हो ना हो तुम रिश्वत नहीं करना हमारे, हम तो एक। तो वो ये कहते हैं कि इतने हम शोध वाले, क्यों? कैसा पानी, कैसा दूध, कैसा चाहिए? अब एक कान में डालेंगे बकरे की पेशाब तो वो गले में जाएगी कि नहीं, तो मुंह में जाएगी कि नहीं, तो सब अंदर तो सब मामला एक ही है ना। तो इतने अपवित्र पदार्थ को वो कान में डलवाने को तैयार है, भयंकर दर्द है, कहे देखो भैया ये बकरे की पेशाब है, कान में डालेंगे तो कान ठीक हो जाएगा। अब तुम बहुत धर्मात्मा आदमी हो, तुमने अस्पहरा घी वाले हो, हाथ चक्की के आटे वाले हो, कुएं के पानी वाले हो, अब बोलो डालें कि नहीं डालें, क्यों देर करता है डालना। ये बात क्या बताता है कि उससे कितनी भयंकर पीड़ा होगी। एक उदाहरण, ऐसे ऐसे पांच उदाहरण है और पांच और ऐसे दस हैं, तो मैं ये सब आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरा विषय रुक जाएगा नहीं पहचान नहीं ना। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया है, रतन सार की 63वीं गाथा से शुरू करते हैं और 77 जो है ना, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में पड़े मद मोह से आछन्न भी, वहां तक आचार्यों ने घुटाई कर दी। और उसका नाम क्या रखा, सुखा नाम सुपरिणामाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार नाम रखा, उसमें ये वर्णन है। तो ये कहते हैं कि ये संसार हमने ये भी एंगल से देखा ही नहीं है कि कौन कितना सुखी दुखी, हमें तो बाहर से देता है, मोटर कार में दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, बढ़िया एयर कंडीशन मकान में रह रहे हैं, तो बस सब सुखी सुखिया दिखते हैं, लेकिन वो सब उनके अंदर जाकर के देखो क्यों तो सब मालूम पड़ जाता है कौन कहाँ खड़ा है, किसकी क्या पोजिशन है। तो हम ऐसे तुम्हारे कहने से चक्कर में आने वाले नहीं है कि उपलब्ध भोगों को आसानी से छोड़ दें, हम तो भोग के देखेंगे और फिर छोड़ेंगे। भैया क्या बात करते हो तुम, यानी जहर भी चक चक करके देखोगे तब छोड़ोगे, तो कालकूट जहर होता है ना, जिसका स्वाद आज तक किसी ने नहीं जाना है, कैसा ये कड़वा होता है, तो हम तो जब मानेंगे चक के देखेंगे क्यों। अरे भाई कुछ बिना कहे पूर्वजों की बात से भी मान लो, हम तो जब चक्रवर्ती हो जाएंगे और तब हम देखेंगे ये चक्रवर्ती तुम्हें सुख है कि नहीं, तब हम इंद्र हो जाएंगे तब देखेंगे ये इंद्र तुम्हें सुख है कि नहीं क्यों। इधर एक सही घटना है, सोनगढ़ की है, चर्चा चलती थी, हे गुरुदेव हम तो हम सब लोग आपके साथ ही मोक्ष जाएंगे, मोक्ष भी से साथ चाहिए, मोक्ष में भी साथ चाहिए, अकेला नहीं जा सकता, जोड़े से तो जाएगा ही बिना जोड़े के, लेकिन गुरुदेव का भी साथ चाहिए। तो मैंने उस वक्त कहा खड़े होकर के कि मुझे ये बात मंजूर नहीं है, क्यों कि गुरुदेव जैसा महापुण्यशाली पुरुष ये तो न मानू कौन से स्वर्ग में पहुंच जाएगा और वह सागरों के लिए उलझ जाएगा, मैं सागरों तक संसार में रुकने के लिए तैयार नहीं हूं, साथ के लोग में समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा नहीं जी अभिमान की बात करते, मैं गुरुदेव के पहले मोक्ष जाऊंगा है। अरे निहाल जी के बारे में खुद गुरुदेव ने कहा मेरे से पहले मोक्ष जाएगा, कहा कि नहीं कहा, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे थोड़ी है कि बड़े आदमी पहले चले जाएंगे और छोटे बाद में जाएंगे, इंद्र बड़ा होता है कि इंद्रानी है क्या मुझे 40 मील चली गई और छोटे इंद्र वाले तक चले गए, बुत लेगी आगे मनुष्य भक्त को चली गई मुझे दूसरी देर आ गया तो पकड़ के ले गए बनना है सदर इंद्र क्यों। अभी तो तुम्हारे पंच कल्याण हो गया बालचली, चिंता मत करना, कहा है बालचली है कि नहीं, हाथ उठाओ हो तो है ना, अब कुछ तुम्हें चिंता मत करना, अब वो थोड़ा वस्तु का स्वरूप भी समझाने दो। इंद्रों के सुख का और चक्रवर्तियों के सुख का वर्णन कर करके मुंह में पानी तो हम बहुत लाए हैं, तो यहां ये कहते हैं कि हमारी जो भाषा हो गई है वो बिल्कुल लौकिक भाषा हो गई है, तो मोक्ष की बातें भी हम नारियों के हिसाब से ही करते हैं, मुक्ति रमा तो ये बेग बड़े है, मुक्ति रूपी कन्या तेरे बले में बनमाला डालेगा और तो ऐसा और ऐसा शुभ्रमणी भरतार हो जाएगा और ये और वो, ये भरतार वाली भाषा थोड़ा छोड़े, तो इसमें ये सब भाषा ऐसी है। देखो शुद्ध नए जो कि ज्ञान की पर्याय है उसे ही आत्मा बताया है, इसमें लिखा तो पहले के आपने बताया है, मैंने नहीं बताया है, इस मूल संस्कृत में ये लिखा है कि शुद्ध नया, और आगे तो कलश आने वाला है, शुद्ध नया आत्मानुभूति रीति शुद्ध न आत्मिका या 13वां कलश ज्ञानानुभूति रेत के लोपी बुद्धा, आत्मान शुद्ध नया आत्मक आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, उन्होंने लगा और आत्माएं तीनों एक ही है, संत मूल गाथा में आया था, और तीनों को एक बताया तो पर्याय की डोर पकड़कर आत्मा में जाना चाहें तो जा सकते हैं, फिर वही कोई डोर ही है जिसे पकड़ के हम चले जाएंगे, ऐसी कल्पना करते हैं। ये तो सब लौकिक उदाहरण है, यदि कोई कोई डोरी तो पकड़ कर स्वदर में तो डोरी के सहारे कोई मुख जाएगा। ये बात ऐसी नहीं हुई कि जैसे कि अन्य धर्मों में गाय की पूंछ पकड़ के मुख चले जाते हैं, गाय वैकुंठ में जाती है, अपन ने पूंछ पकड़ ली तो अपन वैकुंठ में चले। कोई किसी के भरोसे मोक्ष नहीं जाता, समझे ना, और हमें मोक्ष में जाना नहीं है, मोक्ष को हमें आना है, क्योंकि मोक्ष है पर्याय और हम हैं द्रव्य, तो द्रव्य में पर्याय आती जाती हैं, द्रव्य कहीं नहीं आता जाता। अगर मोक्ष में जाने की बात आती तो हम ऊपर को देखने लगते हैं कि उधर कोई एक जगह है और वो मोक्ष है और उधर हमें जाना है और ऐसा है ऐसा है ऐसा क्यों। अरे मोक्ष मोक्ष कहो निज शुद्धता, क्यों अपनी पवित्रता का नाम मोक्ष है क्यों। और लिखा ना ये भगवान आत्मा जो तू है जिसे मोक्ष चाहिए है, वो बंध न मोक्ष करे, ना वो बंध करता है ना वो मोक्ष करता है, वो बंध मोक्ष का करते ही नहीं। अरे तुझे कुछ करना ही नहीं है, अब इसे करने की भाषा में समझना, तो पर्याय की डोर पकड़ लो और चले जाओ, फिर एक चले जाओ, फिर एक चले जाओ। इसे जो लौकिक जो रस्ते है ना, बस वही समझने से कोई कुआ में गिर गया हो तो रस्ता डाल दो तो रस्ता के भरोसे ऊपर आ जाएगा। ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। अब ऐसा भी सुना है कि जिस समय आत्मा की बात सुनकर उल्लास आए उसी वक्त आत्मा को पकड़ने का प्रयास करें, ये तो कलश में आता है। ये कलश में ऐसी पंक्ति आती है, यावत न तावत अत्यंत वृत्ति बेगात, ऐसा है कलश है यार, सदन वादा है उसका, वो अपने प्रवीण होता तो बता देता, जब तक तेरे अंदर की वेद की वृत्ति तेजी से न आए तब तक तू आत्मा में चला जा, ऐसा एक कलश आता है। लेकिन चला जा मला जा की कोई भाषा नहीं है, ये तो टेंशन का काम है कि बराबर सोच देख उल्लास जगत बराबर चला जाए, ऐसे उसी बात देख ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसे क्या करना। जैन धर्म करने रूप है ही नहीं। जिस दिन तुम्हें ये निर्णय होगा कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन करने के विकल्प से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन के टेंशन के विकल्प से सम्यक दर्शन नहीं होता, वो कोई तुरस आदमी से सम्यक दर्शन नहीं होता। तुरस आदमी मतलब समझिए ना, जब ऐसा हो तो फटाफट काम कर लो नहीं तो वो चला जाएगा। जैसे कहते हैं बिजली चमके और उसने स्विच उठा दिया ना, दो डोरा डाल दो स्विच डोरा, क्यों फिर उजेला खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अब तो बिजली चमकने का इंतजार करके ऐसे डोरा और स्विच लेके बैठो, और बिजली चमके जब डाल दो, अगर नहीं डाल पाए तो फिर जब डोरा चमकेगी तो फिर पराधीन हो गया ना। तो ये कहते हैं कि तू सारा जो टेंशन है कर्तव्य तो छोड़ दे। देखो आत्मा पर का कर्ता नहीं है, है ना, फिर आत्मा विकार का कर्ता अशुद्ध निश्चय नहीं से कहा जाता है, लेकिन ज्ञानी उसका भी कर्ता बनता नहीं है, अपने को कर्ता मानता नहीं है, मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता है। और फिर जब अपने प्रणमन तो अगर दूसरे तो कोई नहीं कर जाएगा, वो ही करेगा, करता तो वो ही है लेकिन उसके करने का बोझा उसके माथे पर नहीं। क्रमति पढ़ाई किताब में आपने लिखा है यह परिणमति सब करता, तो जो द्रव्य परिणमित हुआ है मोक्ष को परिणमित हुआ, मोक्ष रूप परिणमित तो आत्मा ही होगा, लेकिन मोक्ष रूप परिणमन का टेंशन माथे पर मत रखना, इसके लिए कहते हो तुम तो अकर्ता स्वभावी है, वो टेंशन का निषेध है। निहाल जी ने बहुत अच्छा बात के लिखा है कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं, मैं तो ध्येय हूं, मैं ध्यान नहीं हूं, मैं ध्याता नहीं हूं। ध्यान तो पर्याय है, वो ध्याता पर्याय सहित द्रव्य है, ध्यान क्रिया का कर्ता ही होगा, वो जब जिस अपेक्षा से भी द्रव्य कर्ता होगा वो निश्चित पर्याय सहित वाला होगा, समझ गया। तो मैं तो ध्येय हूं जिसका ध्यान किया जाना है, मैं तो वो हूं, मैं पुजारी नहीं हूं, मैं तो पूज्य हूं। क्या जिसकी पूजा की जानी है मैं तो वो हूं। तेरा अहम किसमें है, तेरा एकत्व किसमें है? ध्यान करने वाली पर्याय में, श्रद्धान करने वाली पर्याय में, कि जिसका ध्यान और श्रद्धान किया जाने वाला उस भगवान आत्मा में, तो उस भगवान आत्मा में एकत्व होने का नाम सम्यक दर्शन है। कि अच्छा था, मैं अपने भगवान आत्मा में एकत्व स्थापित कर लूंगा तो फिर तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? कि नहीं होगा। कि क्यों? अरे अभी तुझे कहता भी हुआ नहीं है, एकत्व स्थापित हो गया तो हो गया, अवैध नया क्या होगा? आप समझे ना? एक भाई ने मेरे से पूछा कि पंडित जी ये जो हमने पूजा करी है ना, वो बहुत मन लगा के भक्ति भाव से, तो इसका फल तो हमें मिलेगा ना? तो जरा आपने उस दिन कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो उस दिन हमसे जरा शंका हो गई। क्या गड़बड़ हमने करी थी? गड़बड़ तुम कर रहे हो कि भाई पूजा करेंगे तो फल तो मिलेगा ना? हम आप कहेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बोलो मिलेगा कि नहीं? तो मैंने पूछा कि तुझे मिला नहीं है क्या? अभी तूने पूजा करी ना, बहुत आनंद आया ना, तो उसके अलावा और क्या चाहिए तुझे? सुनो जरा, मर की बात सुनना बहुत। एक सूत्र देता हूं, जिसका फल तत्काल मिले उसे धर्म कहते हैं, और जिसका फल गारंटी से तत्काल ना मिले उसे कर्म कहते हैं। कैसे? सुनो, हम आग के हाथ अभी रखेंगे और जले रखल, खाना हम अभी खाएंगे और तृप्ति होगी कल, धर्म हम अभी करेंगे। यदि पूजा धर्म है, आपने धर्म किया है, तो निश्चित रूप से फल उसी वक्त मिल गया। और तुम कह रहे ना मजा आ गया, तो वो तो फल है, और तुम तो अभी मिलेगा उस आशा में लग रहे हो। यदि मिला है ये तो तुम खुद ही मान रहे हो कि मिला फिला तो हमें कुछ नहीं है। क्यों? इसका मतलब है तुम्हारा धर्म तो नहीं हुआ। अब कर्म का तत्काल फल क्यों नहीं मिलता है? बहुत से लोग तो कहते हैं कि नहीं, तत्काल क्या, पहले भी मिल जाता है। प्रसाद दीपाई की गाथाएं भी पेश कर सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं मिलता है कि कर्म का एक नियम है कि पहले वो बंधता है, फिर वो सत्ता में रहता है, फिर वो उदय में आता है, और उदय का नियम है कि आवाधा काल पूरा हुए बिना वो उदय में नहीं आता। और आवाधा काल क्या जानते आप भी? कि जैसे कोई कर्म बंधा कि 100,000 वर्ष का उसकी स्थिति पड़ी, तो 10 मास लगभग कितने काल तक वो उदय में नहीं आएगा। अब जो भी है विस्तार और समझ लेना जो भी है, लेकिन एक निश्चित काल है, तो कम से कम अंतर मुहूर्त तो है ही है ना। तो अंतर मुहूर्त तक वो आवाधा काल पूरा नहीं होगा तो वो फल नहीं दे सकता। तो कर्म का फल तो गारंटी से तत्काल मिलेगा ही नहीं, कम से कम अंतर मुहूर्त बाद तो होगा ना। और जितना जितना उत्कृष्ट स्थिति होगी, ज्यादा उत्कृष्ट जाति का पुण्य होगा, उसका आवाधा काल भी उतना ज्यादा होगा। आप समझे ना, इसे तत्काल मिलने का सवाल कहां है? और यदि अभी तेरे को नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला है तो कभी मिलेगा, क्योंकि अभी तुझे मिला है तो तेरा धर्म हुआ, उसमें मन लगाया तो तेरा धर्म हुआ, तो धर्म हुआ आनंद अभी आया है, तो वो कर्म भी बढ़िया बनेगा और उसका फल भी गारंटी से लोक में जो अनुकूलता है वो आएगी। क्या? तो फिर करें पूजा के नहीं करें? पंचाशी काल में लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, टोडर मल जी ने उसे कोट किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्या लिखा बोलो? अश्व वंचनार्थम, और दूसरा शब्द एक और है, अशुभ से बचने के लिए और तीव्र राग दुर्निषेधार्थम। ये भगवान ज्ञानियों के जो भक्ति होती है वो असुर से बचने के लिए होती है और तीव्र राग ज्वर को उतारने के लिए होती है। दो होती है, दो कारण हैं। तो अब आप यहां आगे पूजा कर रहे हो तो धंधा पानी छूट गया ना, तो असुर से तो बच गए ना। घर पर होते तो क्या करते, पांच इंद्रियों के विषय में ही कहीं ना कहीं उलझे होते ना। क्यों यहां नहीं आते तो सब लोग छाती हाथ पर रखकर अपना अपना निर्णय कर लो। कोई टीवी के सामने बैठा होगा, कोई सीरियल देख रहा होता, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ रात में खाने वाले लोग उनको शास्त्र में निशाचर कहते हैं, हमने निशाचर तो नहीं कह सकता। वे खा रहे होते वो टीवी के सामने बैठ के, वो भी दो दुकान एक दोनों काम एक साथ चल रहे होते। क्यों तो ये सब अशुभ था ना। कोई दुकान पर ही बैठा होता है, कोई रोपड़ा जल रहा होता, कोई अकाउंट देख रहा होता, तो सब अशुभ में था ना। अब यहां आकर के आप तत्व ज्ञान की बात सुन रहे ना, तो अशुभ एक प्रयोजन तो पूरा हो गया ना। पूजा में बैठ गया, भगवान की भक्ति कर रहे तो एक प्रयोजन तो पूरा हो गया ना। और तीव्र राग ज्वर, पांच इंद्रियों के विषय में रमना ये तीव्र राग है, और भगवान की पूजा भक्ति में आना ये मंद राग है। फल नहीं है ना, ये तीव्र राग ज्वर से भी बच गए। यही फल बताया है पंचासी काल में अमृतचंद स्वामी ने, कुंदकुंद स्वामी ने, और वो तुम्हें मिल ही गया है। बहुत से लोग कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे, मेरे से भी कहते सुनते मिले जाते हैं कि इस जैन समाज ऐसा हो गया है, जो पागल हो गया है। क्यों ये क्या हो गया पागल, ये बड़े बड़े पंच कल जाना और समाज का करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। और जो वहां दो करोड़ रुपया खर्च किया वो ही नहीं है। अरे कितने लोग आए तो उनका भी प्लेन के टिकटों का खर्च हुआ, ट्रेन के टिकटों का खर्च हुआ, उनका धंधा पानी छूटा, तो कमाई छूटी। बहुत लंबा थोड़ा हिसाब बताते हैं वो। क्यों इतना इतना समाज का पैसा चला गया, खाल जाए ना। और यदि ये नहीं करते तो वो बच जाता, बच जाता तो कहां जाता है? बोलो, आपने दसवीं से ज्यादा रुपया यहां दे दिए, लाख दो लाख दे दिए, जो भी दे दिए, आप स्वयं अकेले में बिता रहो कि वो यहां नहीं दिए होते तो वे कहां खर्च होते। क्यों तो ऐसा लाख में एक मिलेगा जो ये बता सकेगा कि इससे अच्छे काम में खर्च होते। मैं उनको छोड़ देता हूं कि तुम मत दो, लेकिन बाकी का जिनका और इससे बुरे काम में खर्च होते उन्हें तो देने दो भले आदमी। जैन धर्म का एक बहुत मार्मिक दोहा है, अजाची के दिन धर्म है और धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे बेठगिया जग माही। सुना समझा कभी? अजाची के दिन, जैन धर्म तो अजाची है, नहीं मानने वाला है, नहीं मांगने का नाम जैन धर्म है। इन्हें धर्मी मांगे नहीं, धर्मात्मा जी तो मांगने का काम कभी करेंगे नहीं, और धर्मी बन मांगने लगे वे ठगिया जगमाही, ऐसा लिखा है। और हिंदुस्तान की मिट्टी की ये विशेषता है कि इसमें पैदा होने वाले मुसलमान कवि ने भी लिखा, क्या लिखा, रही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही। क्या लिखा, क्या नहीं लिखा? जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते, पंडित जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया, हमें तो बहुत आराम मिल गया। तो क्या बहुत लोग परेशान करते थे हमें, अब थोड़ी परेशानी तो कम होगी। क्यों क्या नाम सौरभ जी? अरे भाई ज्यादा खुश मत हो, पूरा छंद सुन लो। क्या, रही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाए। यानी रहीम कभी उन लोगों को जिंदा मानने को तैयार नहीं है जो मांगने का धंधा करते हैं। मर गए ना, जिंदा ही मेरे से जैसे हैं। तो बुद्ध उनसे पहले दे मरे जिन मुख निकसत नाही। तो वो जो मांगने पर भी जिनके मुख से ना निकलती है वे उसके भी पहले मर गए। धर्मनाथ बुद्ध एक किताब है महाकवि हरिश्चंद्र की, धर्मनाथ भगवान का चरित्र है, तो उसमें लिखा कि उस नगर में महासेन राजा का जो नगर था ना, उस नगर में देहीति दुरक्षर द्वयम, देही ये दो अक्षर है, देही ये दो, ये दो दुरक्षर किसी के कान में कभी पड़े ही नहीं थे। क्यों? मैंने कोई मांगता ही नहीं था, दे दो कोई कहता ही नहीं था। कौन से नगर में? धर्मनाथ भगवान का जो जन्म स्थान जन्म नगरी है उसका वर्णन कर रहा महासेन जहां का राजा है कि दे दो, ये दो शब्द किसी भी आदमी ने अपनी जिंदगी में सुने नहीं थे। क्यों? तो उन्होंने इसके जवाब में लिखा क्योंकि अनाकार निरीक्षणात् वहां के जो लोग थे तो जिसको जो आवश्यकता होती थी तो उसके आकार को देखकर समझ जाते थे और गुप्त रूप से उसको उधर पहुंचा देते थे। तो किसी को देही कहने का मौका मिलता ही नहीं था, और जिसने अब एक देही शब्द सुन लिया वो समझता था उसमें साथ में नरक में चला गया। इसलिए मेरे कहने का अंदर दान देने लेने का निषेध नहीं है, ये तो मांगने इसका निषेध है। क्यों मांगना पड़े है? जब हमारे सारे घर एकदम लेटरिन बाथरूम सिंगमरमर के जड़ गए बढ़िया एकदम, और सब लोग हमें ले जाते हैं अपना बाथरूम दिखाने के लिए, क्यों? क्यों? तो फिर हमारा मंदिर ये उन्नीसा कैसे रहेगा? कैसे रहना चाहिए बोलिए, यहां नहीं लेते बाथरूम में लगते हैं। एक फाइनल बात करके खत्म करता हूं। कोई आदमी कलकत्ता आएगा, सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आपके घर वो तब जाएगा जब आप उसे निमंत्रण करोगे, सब पंडित हो चाहे सेठ हो चाहे असाधारण आदमी हो। क्यों? अब आप अपना मकान अरबों का बना लेना, हमें दिखाना होगा तो निमंत्रण करना पड़ेगा। मैं अंतिम दिन कह रहा हूं घबराना नहीं, आप इनमें समझ लगे निमंत्रण देने करने की चेता दे रहा है। क्यों? कोई नहीं आएगा आपके घर देखने, समझे ना, लेकिन ये मंदिर बिना निमंत्रण के आएगा और इसे देख के निर्णय करेगा कि एक कलकत्ता के मुंशियों की आर्थिक स्थिति क्या है, यहां अपनी लड़की देना कि नहीं देना। समाज की पोजीशन क्या है इसका पता मंदिर देख के लगेगा। ये मंदिर में दरिद्रता दिखी तो समझे कैसे गांव है। तो ये हमारी समाज की प्रतिष्ठा के स्थान है ना? और आप अपने जितना जितना खर्चा आपने अपने बाथरूमों में किया है उससे एक बटा चार भी दे दो तो इससे दस गुना मंदिर दस गुना बढ़िया बन जाता। क्यों ये सोचना पड़े समाज को? क्यों ये कहना पड़े समाज को कि आप दीजिए? अब गुरुदेव के भक्तों में क्यों जिनने ये धारा लगाई कि जहां सवाल ही नहीं था अब अभी अभी खत्म हो गया टाइम, अब अभी अभी नहीं चाहिए था, शाम को लिखाएंगे जो भी लिखाना नीचे लिखा देना, हम शाम को बोल देंगे तो बोल देंगे। क्यों? अभी तक तो इतना प्रसंग का टाइम हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो। ये सुनने के आदि थे हम लोग, तो ये होने रहना चाहिए हम सब लोगों को सुनने के आदि। क्या जल्दी मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये कोई दान देना लेना वे व्यवस्था इनका निषेध नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी होना चाहिए सवाल उसका है। तो इसमें लिखा है देखो उल्लास है उसी वक्त, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम अर्थात तो सम्यक हो जाएगा, अथवा जो मैं कह रहा था ना कि तेरे को वो जो रुचि जगी और आत्मा में अपनापन आया तो फिर सम्यक हो जाएगा कि अब क्या बाकी रह गया। सम्यक तो हो गया ना, और तुझे लगता है कि अब हो जाएगा, इसका मतलब तू सम्यक को भी पहचाना ही नहीं है। है ना। अथवा पहले तत्व निर्णय करें, अथवा कब तक तत्व निर्णय करते रहे ऐसा लगता है, और अगली साल आए थे तब भी तत्व निर्णय, इस साल आए थे तो तत्व निर्णय। टूर्नामल जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया लोकसभा प्रकाशक में, क्या लिखा, वो तत्व निर्णय की पहले ऊपर से विधि बताई और बताते बताते लिखा कि जब तक तेरा आत्मा पर पदार्थों से उपयोग हटकर त्रिकाली जो भगवान आत्मा पर ना चला जाए तब तक निरंतर ऐसा ही किया कर, चाहे वो एक दिन में हो जाए और चाहे दस भव लग जाए। काल का मर्यादा नहीं बताई कि दस साल के, दो चार के, पांच साल, समझे ना। वो जो जो चीज होनी है वो हो ना रहा है जब तक तू तत्व अभ्यास कर। और फिर एक लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना पूजा करे वृत्त पाले, सब लिखी लिस्ट लंबी है ना, तीन लाइनें हैं ऐसी, तो भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो, असम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और जो जीव तत्व विचार करता है तो इनके बिना भी तत्व विचार का अधिकारी है। अब हर एक को उस शेर जैसा सम्मत दर्शन चाहिए, फटाफट हो जाए। और कुछ लोगों को वो तुष्मासम घोषण तो वाला चाहिए, आलसी लोग हैं, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तब तुम्हें मन नहीं लगता है। तो वो तुष्मासम घोषण तो वालों को हो गया था ना, वे तक जानते थे सर, कुछ नहीं जानते थे, तो इसके लिए कोई पंडित हुकुमचंद बनने की क्या जरूरत है, ऐसे अज्ञान का पोषण करता है क्यों। ये उदाहरण इसके लिए था, वो तो इसके लिए था कि भेद विज्ञान जो प्रयोजन की चीज है, यदि वो हो गई तो तेरा काम हो जाएगा। यदि भाग्य से तेरी बुद्धि बहुत ही खराब हो किस जैसी शिवभूति मुनि जैसी, तो तू घबराना नहीं, ये उनके लिए था। यदि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो तो शिवभूति वाला तुम्हें काम आ जाएगा। तुम्हारी बुद्धि देखने की एक एक हजार तो फोन नंबर याद है सारे इनकम टैक्स के काम। वो तो ऐसा बोलते थे कि अपने बेटे बहुएं बहुएं की कहां से आई होंगी, पीहर वाले कितने भाई बहन है, उनके ससुराल वाले वहां वाले कहां से, और सहते की कहां से किसकी रिश्तेदारी बनती है, वो सारा हिसाब किताब कितना मालूम है। बुद्धि तो इतनी तीक्ष्ण है क्यों, और तुझे सम्मा दर्शन सुषमासम घोषण तो वाले का चाहिए, सम्मा दर्शन शेर की पर्याय वाला चाहिए, तू शेर बन गया शेर की पर्याय में सम्मा दर्शन हो जाएगा। ऐसे शेरों को होता है ऐसा, आदमियों को थोड़ी होता है। माने ये उदाहरण किस बात के लिए है कि इस शेर तक को हो सकता है सर बाबू, तो तू तो आदमी है, इसके लिए इस उदाहरण का उपयोग करना है, उसके लिए उपाय करना। उदाहरण किस बात के लिए दिया था और हमने किस बात के लिए उपयोग किया, मेरे समझ में आया कि नहीं है। माने हम किस बात के लिए उपदेश दिया था कि तू घबरा मत, बुद्धि इतनी हून हो तो भी घबरा मत, परंतु जैसी अवस्था हो तो भी घबरा मत, तू तो शेर से सौ गुना अच्छा है, तेरे को शिवभूति मुनि से ज्यादा तेरे को बुद्धि है, इसलिए तू ये मत समझ के मैं नहीं कर सकता। गुरुदेव बोलते थे मैं नहीं कर सकता, यही सबसे बड़ी बाधा है, मेरी समझ में नहीं आएगा ऐसा मानना ही समझ में नहीं आने का कारण है। इसलिए कहते हैं कि भाई तत्व ज्ञान का अभ्यास तब तक निरंतर करो, और वो सम्मा दर्शन कब होगा और नहीं होगा, होगा जब हो जाएगा, क्योंकि काल लब्धि आए बिना वो होगा नहीं, काल में है ना, उसके लक्ष्य से निरंतर उस पर ऐसी निगाह रख करके जरूरत नहीं है। होने वाले सम्मा दर्शन पर निगाह मत रखो, जो है अंदर में त्रिकाली ध्रुव उस पर निगाह रखो, और उस पर निगाह जाएगी तो सम्मा दर्शन हुए बिना रहेगा।